محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا، گفتگو ہماری ولایت کے حوالے سے تھی، اور اس میں یعنی کہ ایک چیز تھوڑا سا میں ذاتی طور سے ایک ڈسکشن بہرحال چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جس حوالے سے ولایت پہ بات کر رہے ہیں وہ عام فہم جو نظریہ ہے ولایت کا اس سے بہت ہٹ کر ہے. یعنی کہ جب ہم عام طور سے ولایت کی بات کرتے ہیں تو تقریباً اس سے ہمارے ذہنوں میں مراد ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کی خلافت. تقریباً یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ولایت علی اور ولایت غیر علی علیہ السلام. لیکن ولایت کا جو ایک عمومی مفہوم ہے، یعنی جنرل پرسیپشن یا جنرل کنسیپٹ ہے، وہ یہ کہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا مقصد رکھتا ہے، کس کو چاہتا ہے، کس سے قریب ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نیٹ ورک کیا ہے کہ جس کے حوالے سے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھتا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کا گول کیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ولایت کا تعین کرتی ہیں. اور اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارا ایم، آبجیکٹیو اور گول صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ خدا. اور خدا کے حوالے سے بھی یعنی کہ مختلف کم از کم دو نظریات سمجھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں یا خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، تو اس میں ایک جو شاید کہہ لیں گے تھوڑا سا لو لیول کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہم میں خدائی صفات پیدا ہو جائیں. یہ نچلے درجے کا قربتاً اللہ ہے. اور اعلیٰ درجے کے قربتاً اللہ یہ ہے کہ ہم اس لیے خدا کے واسطے عمل کرتے ہیں تاکہ میرا وجود خدا کے نور سے روشن ہو جائے. اور یہ کوئی ایسی افسانوی بات نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بالکل افسانہ یا کہانی نہیں ہے کہ خدا کے نور سے روشن ہو جائے، بلکہ تمام انبیاء، اولیاء اور ائمہ علیہ السلام سب اسی منزل پہ فائز ہیں. کہ اور بلکہ حدیث پیغمبر بھی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. بصیرت مومن یہ ہے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو دو طریقوں سے ہم خدا کو اپنا آبجیکٹیو قرار دے سکتے ہیں. پہلا یہ کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ خدائی کوالٹیز ہم میں پیدا ہو جائیں. مثلاً یہ کہ خدا اگر رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا قدرت مند ہے، خدا خالق ہے، تو یہ صفات ہمارے اندر موجود ہوں، ہم بھی ایسے ہو جائیں. یا جیسے مثال کے طور پر، اچھا، اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ صفات کو اوور آل حاصل کرنے کی بات ہے. یعنی کہ خدا اگر رحمان اور رحیم ہے تو خدا رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ قاہر بھی ہے، غالب بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں، اور اسپیشلی ان جیسے معاشروں میں، کہ ہم پر بعض اوقات نرمی اور محبت اتنی زیادہ سوار ہو جاتی ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنے سے بھی پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، برائی کا سامنا کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کا بیچارے کا دل نہ دکھ جائے. ایسی نرمی اور ایسی مہربانی اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ یعنی کہ جیسے رسول خدا نے بھی فرمایا کہ مسلمان کی اصل نشانی اور علامت کیا ہے، کہ خدا کے لیے محبت کرتا ہے اور خدا کے لیے ناراض ہوتا ہے. تو یہ دونوں کوالٹیز مسلمان میں ہونی ضروری ہیں. ہم حقیقتاً جب محبت کی بات کرتے ہیں تو نہ وہ محبت خدا کے لیے ہوتی ہے، بلکہ وہ مہربانی اور جو محبت والے اثرات ہم شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی کے پیچھے بھی اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور خدا کے لیے ناراض بھی نہیں ہم ہوتے. ठीक है। और इसी वजह से यहाँ से एक बात और भी है, यानी कि ये जो पिछली जिस आयत पे मैं जहाँ पे रुका था, अगर आपको याद हो कि हमने पूरा आले इमरान सूरह की आखिरी आयतें पढ़ी थी 10-12, जिसमें हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि एक इंसान अगर वली खुदा होना चाहता है तो उसे ये समझना पड़ेगा कि खुदा बंदे को इंडिविजुअल और इज्तमाई एतबार से क्या देखना चाहता है। इस बात को समझे बगैर कोई विलायत खुदा को नहीं पा सकता, क्योंकि विलायत खुदा का मतलब है खुदा से करीब होना। खुदा से करीब होने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को वैसा बना लेना जैसा खुदा चाहता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है खुदा से करीब होने का, यानी हमारे कहने से या हमारी बातों से या हमारे दावे और नारे से खुदा से कुर्बत नहीं हासिल होती। तो उस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की थी कि क्या वो उलुल अल्बाब वाली आयतें थीं, उसके बाद दीगर चीज़ें थीं। तो बहरहाल यानी कि खुदा जब उनको कबूल कर रहा है, ये आयत नंबर है 195, तो वहाँ पे फरमा रहा है कि फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्था, कि तुम लोग यानी कि जो इस मेयार पे पूरे उतरते हो तो उनको उनके रब ने कबूल किया है। सही, ये विलायत है। विलायत खुदा यह है कि इंसान खुदा की तरफ से कबूल हो जाए, खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। जैसे खुदा फरमाता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यानी जो साहिबान तकवा हैं खुदा उनसे कबूल करता है, उनकी ज़ात को कबूल करता है, उनकी ज़ात को पसंद करता है। तो फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, उनको रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है, कबूल किया है उनके लिए उनके रब ने। और उनसे किस बात का वादा किया है, अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्था। देखिए, हमारे दो बुनियादी सवालात होते हैं इस ज़िंदगी में, मोमिन के दिमाग में दो बुनियादी खदशात उठते हैं और उन दोनों का जवाब यहाँ पे मौजूद है। पहला दिमाग में जो एक वाहिमा या एक प्रॉब्लम आती है वो ये कि हम नेक अमल किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, और बज़ाहिर ये जितने शैतान और फसादी और बदमाश लोग हैं ये ऊपर हैं, इनके हाथ में दुनिया की नेमतें हैं, इनके पास ताकतें हैं, उसके भी अपने मसाइल दूसरे हैं, इस वो भी हमारी नालायकी है। वरना अगर हम इज्तमाई तौर से दीन के तकाजे पूरे करें तो कतन इनके हाथ में ये सब चीज़ें ना हो। लेकिन स्टिल कि एक शख्स है कि आप अपनी जगह पर अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। खुदा जवाब ये दे रहा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, ला बेशक मैं ला नहीं उज़ीउ ज़ाया करता हूँ अमला अमल को आमिल मिनकुम, तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को बेशक मैं ज़ाया नहीं करता हूँ, यानी तुम्हारा अमल मेरे पास प्रिजर्व्ड है। इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, इस जाहिरी चीज को देखकर इस नाउम्मीदी का शिकार ना हो जाओ कि तुम्हारा अमल जाया हो रहा है, बल्कि हमारे पास महफूज है, मैं उसको जाया करने वाला नहीं। और दूसरा एक कंसर्न है मिन ज़कर इन अनसा, यानी चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कि खुदा की नजर में मर्द और औरत के अमल में फर्क नहीं है, यानी उसकी अर्जिश में, उसकी क्वालिटी में, उसकी कीमत में फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये कि खुदा ने दोनों को दो मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी हैं। यानी हम ये समझते हैं कि हम मर्द हैं, मिसाल के तौर पर हम बाहर जा रहे हैं, हम मैदान जिहाद में निकल रहे हैं, हम फलां काम कर रहे हैं, फलां काम कर रहे हैं, हमारे अमल की कीमत ज़्यादा है। खुदा कह रहा है चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो अमल तुम मेरे रास्ते में कर रहे हो, बैकग्राउंड मैंने आपको बयान कर दिया था कि जो अमल जी कि जो अमल तुम करते हो, अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़कर इन उन्था, कि मैं नहीं ज़ाया करने वाला, बेशक, और अन्नी यानी बेशक, ला नहीं उज़ीउ ज़ाया करता हूँ, अमल अमल आमिल अमल करने वाला, मिनकुम तुम में से, यानी ए ग्रोह मोमिनीन जिनकी निशानियाँ हमने पीछे बयान कर दी कि जो ये क्वालिटीज़ रखते हो, अगर तुम में से कोई अमल जो तुम करते हो मैं उसको ज़ाया नहीं करने वाला हूँ, यानी मेरे पास प्रिजर्व्ड है। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इसमें मेरी नजर में मर्द और औरत का फर्क नहीं है।
तो जैसे वो कहते हैं ना कि मर्द को जिहाद है और औरत
भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हदीसों में है कि औरत का जिहाद घर में अच्छी जिंदगी अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना जिहाद है। बल्कि औरत के हवाले से तो जो चीज़ें आई हैं फजीलत की, वो तो मर्द के लिए हैं भी नहीं। कि ख़ास तौर से ये कि अगर कोई औरत कंसीव करे, कोई खातून कंसीव करे और उसके बाद जब वो विलादत हो जाए तो वो औरत इस तरीके से गुनाहों से पाक होती है जैसा नामौलूद। अपने घर में अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली औरत राह खुदा के सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन के बराबर है। इसलिए कि आप इस चीज़ को और हम इस चीज़ को शायद महसूस नहीं करते कि अगर ये घर तकलीफ दे हो जाए हमारे लिए, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं, बल्कि उसमें रसूल खुदा की तरफ से एक हदीस और भी है कि जिसमें आपने फरमाया कि खुदा ने, यानी अच्छी जौजा के हवाले से आपने फरमाया कि खुदा के मलाइका में से और हूरों में से कुछ ऐसी मखलूकात हैं जो ज़मीन पर हैं, इस किस्म की बातें। तो यानी कि खुदा की नज़र में मर्द और औरत का फ़र्क नहीं है। क्लियर है इसको कर कि अमल जो अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ अनसा। और ये फिर एक और बहुत ज़्यादा काबिल बहस नुक्ता है जिसका अभी मौका नहीं है कि आखिरत में जिन्सियत वजूद रखती है कि नहीं। जी ये दूसरा मौजू है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में का ख्याल रखते हैं कि इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमारे दरमियान हैं कि मतलब मर्द होना, औरत होना, बाप होना, बेटा होना, दादा पोता, ये सब का सब इस डोमेन के अंदर है। जब इस डोमेन से हम बाहर निकल जाएंगे इनमें से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। यानी कि इस हालत में अंजाम दिए जाने वाले रोल बाकी रहेंगे, रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। अरे ये बात समझ में, यानी मैंने बाप होने की हैसियत से क्या रोल प्ले किया इस लाइफ में, बेटे होने की हैसियत से क्या रोल प्ले, ये बचेगा वहां पे जिसका अजर मिलेगा। बाप और बेटा नहीं बचेगा, वालिद और वलद नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन यानी कि इसमें कुरान करीम की आयतों के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़े है कि आखिरत में जब हम उठेंगे उस सूर के फूंके जाने के बाद तो वो एक बिल्कुल अलग नौइयत की लाइफ होगी जिसमें ये वालिद और वलद और ये सब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर किए जाने वाले तमाम आमाल के असरात महफूज होंगे और जिन्हें हम देख रहे होंगे। मलिकात नहीं 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 मलिकात की पहचान है। इसलिए कि इब्तिदा में यानी कि आखिरत के हवाले से जो चीज़ें ज़ाहिर है कि वो एक बहुत तफसीली मौजू है कि एक जुमला मैं सर्च कर देता हूँ कि आखिरत के हवाले से जो बात समझ में आती है वो ये कि जब लोग उठेंगे तो तकरीबन यही इम्प्रेशंस होंगे जो दुनिया में हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी शक्ल अपने मलिकात के हिसाब से आती चली जाएगी तो वो दूरियाँ पैदा होती जाएंगी। जैसे सूरह हदीद की आयत में ये बहुत क्लियर है कि मुनाफिकीन और मोमिनीन एक जगह पर होंगे जी, और फिर दीवार आ जाएगी उनके दरमियान, क्योंकि दुनिया में मुनाफिकीन और मोमिनीन साथ रहते थे। तो बिगिन जब शुरू होगी बात तो ऐसे ही शुरू होगी, वो पहचान रहे होंगे ये दोस्त पर कहेगा दोस्त कहाँ गया जी। ये फलां कहाँ चले गए, तो उसको देखेगा वो जहन्नम में नजर आएगा एंड सो ऑन। तो रफ्ता 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 करके क्या होगा कि वो मलिकात यानी हमारी जो भी शक्ल है वो हमारी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से बनती चली गई। मलिका अमल को नहीं कहते, मलिका कहते हैं कि हमने अपने इल्म और अमल के ज़रिए से जो क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ली,
अमल से क्वालिटी
बनी वसीला है लेकिन अमल नहीं है।
नहीं नहीं, अमल एक्चुअली हदफ नहीं है।
नहीं नहीं, उसके वसीले से जैसे मिसाल के तौर पर कि एक शख्स में शुजाअत है, ये मलिका है। इल्म की हकीकत है, ये मलिका है, ना कि मैं बहुत चीज़ें जानता हूँ, बल्कि इल्म मेरे अंदर जज्ब कितना हुआ। ठीक है ना, इस हवाले से कई वो हैं कि आखिरत में जब लोग उठेंगे तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा रसूल कौन है, नहीं पता होगा, नहीं खबर, नाम नहीं याद होगा, कोशिश करेंगे नाम नहीं याद आएगा। फिर उसके बाद काफी देर बाद कहेंगे अच्छा वो जिन पर कुरान नाजिल हुआ था, नाम फिर भी याद नहीं आएगा। इसलिए कि दुनिया में वो ऐसी जिंदगी उन्होंने नहीं गुजारी कि वो रसूल खुदा के साथ अपना ताल्लुक पैदा करते। यही बहस विलायत है कि हम जिसके साथ विलायत का रिश्ता जोड़ते हैं यानी उसे हमारे दिल में रहना चाहिए, उससे हमारा एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा मतमय नज़र नूर नज़र होना चाहिए। सही है, तो तुम में से किसी का अमल मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, बाअज़ुकुम मिन बाअज़, इस पर हमने बात की थी कि तुम में से एक दूसरे से हैं, यानी तमाम ग्रोह मोमिनीन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से मरबूत हैं, और ख़ुदा की नज़र में मुसलमानों के लिए इस बात का कोई तसव्वुर नहीं है कि वो एक दूसरे से जुदा हों या जुड़े हुए हों टूटे हुए हों। लेकिन किस बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हुए? मोहब्बत खुदा की बुनियाद पर। ठीक है, यानी कि जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो आमतौर से दुनिया की दोस्तियां मफादात की बुनियाद पर बनती हैं और परवान चढ़ती हैं। ऐसी तमाम दोस्तियां कयामत में अदावत और दुश्मनी की शक्ल में जाहिर होंगी, जिसके कुरान में बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए हुए, बहुत सारे ऐसे कि वो सब एक दूसरे को लानत कर रहे होंगे, कहेंगे तुम्हारी वजह से हम जहन्नम में चले गए, वो कहेंगे तो हम क्या करते, तुम खुद ही जाहिल थे और तुमने खुद ही कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं समझा। ये सब एक दूसरे पर ऐसे लानत कर रहे होंगे। तो जो दोस्ती खुदा की वजह से बुनियाद पर कायम है वो बाकी रहेगा, और इसी तरीके से ये रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो रिश्तेदारी बाकी रहेगी जो खुदा की वजह से कायम है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर पैगंबर अकरम ने अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई बनाया और कहा या अली अंत अखू फिद दुनिया वल आखिरा, तो क्या मतलब हुआ इसका कि मैं तुमको अपना भाई बनाता हूँ ताल्लुक ब खुदा की बुनियाद पर, और ये रिश्तेदारी सिर्फ दुनिया में कायम रहने वाली नहीं है बल्कि आखिरत में भी बाकी रहेगी। या वो जो एक जिसकी एक मानवी तशरीह के पैगंबर अकरम जब अर्श तक पहुँचे और ख़ुदा ने कहा अपनी नाइलैन समेत आ जाओ, जूतियों समेत आ जाओ, ये जूतियाँ क्या है, मतलब जूती क्या मतलब, और अर्श कोई ताख्त है कि जूती लेके चढ़ जाओ उस पर। इसका मतलब नाइलैन जो है ना वो क्या होता है कि वो चीज़ जो इंसान से जुड़ी हुई हो, पैर में लिपटी हुई हो, कि हमारे जो पैर से लिपटी हुई चीजें हैं वो सब की सब जाती मफादात पर हैं। रसूल ने जितनी चीजें भी रसूल के अटैचमेंट्स हैं सब के सब ले लाएं, खुदा ने कहा इसमें से किसको बाहर निकालूं मैं, इसके सब के साथ आ जाओ। ठीक, तो बाअज़ुकुम मिन बाअज़, कि तुम में से बाज़ से हैं। فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, اب دیکھیں یہ ہے ڈینجرس مسئلہ, اور اس کی تھوڑی سی تشریح ہم آج کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پس جنہوں نے ہجرت کی, اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور جنہوں نے میرے رستے میں جنہیں اذیتیں دی گئیں, وَقَاتَلُوا, انہوں نے قتال کیا, وَقُتِلُوا, اور قتل ہو گئے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو میں حتماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور لازماً ان کو داخل کروں گا ان جنتوں میں, ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ظاہر ہیں ہم سب اس کی تما رکھتے ہیں کہ برائیاں دور ہوں, یعنی جو خرابیاں ہیں پاک ملکات اور پاک نفس کے ساتھ جائیں آگے, اور جنت کی نعمتیں۔ لیکن اس کے لیے خدا نے شرطیں کتنی کڑی رکھ دی ہیں کہ ہاجروا, ہجرت کرو, اخرجو, اور اسی چیز کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, کہ ہم جب بھی خدا کے لیے محبت करना और नाराज़ होना शुरू करना शुरू होंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। यानी जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी को अपने मफादात से हट कर और खुदा के लिए चाहना और नाराज़ होना शुरू किया, ये सब का सब आपके सामने आ जाएगा। अज़ियत भी आएगी, तकलीफ़ भी आएगी, घर से निकलना भी पड़ेगा, सब कुछ आएगा। अभी ये क्यों नहीं है, अभी ये हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों हम इसको फेस नहीं कर रहे? इसलिए कि हमारी ज़िंदगियां खुदा के लिए गुजर नहीं रही हैं। आपके सामने मिसाल मौजूद है कि भाई जो कौम है वो किसी को जाके उन्होंने अटैक तो नहीं कर दिया ना किसी पे, अभी तक उनकी तो हिस्ट्री नहीं है ना कि उन्होंने किसी पे भी एग्रेशन किया हो, लेकिन आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये इस बात का सबूत है, जिसकी जिंदगी खुदा के लिए गुजरती है उसके ऊपर ये सब कुछ खुद ब खुद आएगा। हिजरत, घर से निकलना, अजियत, और जैसे मैंने 185 वाली आयत आपको पढ़ के सुनाई थी कि खुदा ने कहा लाजमी तौर से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और जो मुशरिक हैं उनसे तुम्हें कसरत से अजियत पहुंचेगी, अवन कफीरा, कि कसरत से तुम्हें अजियत मिलेगी किसकी तरफ से, कि जो जिन्हें तुमसे पहले किताब दे दी गई और जो मुशरिक हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि ये एक और थोड़ा सा जो लोग ज़रा ज़्यादा गहराई में जाके सोचते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि जैसे सुकून की, इत्मीनान की, कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि खुदा की याद से दिलों को इत्मीनान पहुँचता है। खुदा, जो लोग खुदा वाले हैं, इलाही हैं, खुदा के रस्ते पे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन फ़िद्दुनिया वल आख़िरा। फिर दूसरी तरफ खुदा एक तरीके से तकरीबन लाजमी शर्त लगा रहा है कि ये हिजरत और जिहाद और अज़ियत और कत्ल और क़िताल, ये दो चीज़ें ज़िंदगी का अमन व सुकून और इत्मीनान, और ये हिजरत और जिहाद और अज़ियत और क़िताल, ये आपस में रिकनसाइल कैसे करते हैं? मतलब ये कि अगर मैं दीन खुदा को कबूल करूँगा तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहूँगा या इस हालत में रहूँगा? अब ये फैसला करना मुझे मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तरफ ये कि हिजरत और जिहाद और क़िताल और अज़ियत, कि जो पहुँचेगी पहुँचेगी। यानी आज हम इस माशरे में हक बात कहना शुरू करते हैं, आप देखें ये लोग क्या जुलूक करते हैं। उस तरीके पर आप इंसिस्ट करें कि जो खुदाई तरीका है, पर देखें यही लोग आपके साथ, यही अहले किताब जो है, आप कहां तक पहुंचाएंगे आपको। सही, तो ये एक तरफ, ये एक तरफ सुकून, एक तरफ इत्मीनान। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके इशारतन हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि इसको और एलैबोरेट करके बयान किया जाए कि इंसानी नफ्स यानी इंसानी जान दो हकीकतों के साथ ज़िंदा है। एक हकीकत रूहानी है, एक हकीकत जिस्मानी है। अगर नफ्स रूहानी हकीकत के, जो यकीनन खुदा कुल रूह मिन अम्र रब्बी, और फिर वहाँ से वो खुदाई कनेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जब नफ्स रूह के साथ कनेक्ट होती है और रूहानियत के साथ कनेक्ट होती है, अमन व सुकून व इत्मीनान और आफियत व बरकत व खुशगवारी। जब नफ्स जिस्म के साथ कनेक्ट होता है तो हिजरत व जिहाद और मुजाहिदा और कत्ल और अज़ियत। ये स्कीम ऑफ लाइफ। हम जिस्मानी सुकून तलाश करते हैं। अब हमारे सामने दो में से एक अल्टरनेटिव है, या रूहानी सुकून हासिल करें, जिसम आपके मुसीबत में रहेगा कुछ ना कुछ, यानी और कुछ नहीं तो इबादत ही एक परेशानी है कि इबादत के लिए ख़ास तौर से, जैसे यानी कि जैसे जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जो जुमले हैं वो हमारे लिए अजियत हैं, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनका इंतकाल हुआ तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे उनके पास, वापस आए तो पता चला इंतकाल हो गया है, इसने खुदा से ज़िंदा किया माँ को, पूछा आना चाहती हैं वापस? मैंने कहा नहीं, वैसे तो ख्वाहिश नहीं है, लेकिन दो चीज़ों के लिए। क्योंकि वो कौन सी दो चीज़ें? कहा सर्दियों की नमाज शब और गर्मियों के रोज़े, दोनों हमारे लिए तकलीफ़ है। मतलब जो चीज़ उनको अट्रैक्टिव लग रही है इस ज़िंदगी में, वो दोनों चीज़ें तकलीफ़ दें। या इमाम अली अलैहि सलाम ने जैसे फरमाया कि मुझे इस दुनिया में से तीन चीज़ें पसंद हैं, खुदा की राह में तलवार से जहाद करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, गर्मियों के रोज़े रखना। इस दुनिया में से तीन चीज़ें पसंद करता हूँ, ये सब हमारे लिए तकलीफ दे। तो बेसिकली थीम यही है कि जब नफ्स और जिस नफ्स का वो पहलू जो जिस्म से मुताल्लिक है, वो हिजरत और मुजाहिदा है, उस जगह पर आराम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तबाही है। किस चीज़ की तबाही है? रूहानी पहलू ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो खुदा ने बात बयान की है, जैसे सूरह तौबा की जो बहुत मशहूर आयत है कि इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बे अम्वालिहिम व अन्फुसिहिम बे अन्न लहुमुल जन्ना क़ातलू व क़ुतलू, कि खुदा ने ख़रीद लिया है मोमिनीन से उनके नफूस को और उनके अम्वाल को, कि उनके लिए जन्नत है। कि वो करते क्या हैं? कत्ल करते हैं, कत्ल हो जाते हैं, और यह सिफत उनकी तौरात और ज़बूर और इंजील उन हर जगह पर मौजूद है किताबों। तो बेसिकली जिस्म ता वक्त मर्ग जहमत में रहना है, अगर हम खुदाई हैं तो जिस्म को आराम नहीं मिलेगा। जिस वक्त से हम ये फैसला करेंगे कि हम खुदाई ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिस्म आराम में नहीं आएगा। यही सब लोग मुसीबत पड़ जाएगी आपको, कि ये सारे के सारे जान के पीछे लग जाएंगे, कभी वो सैंक्शंस लग रही होंगी, कभी ये मुसीबत आ रही होगी, कभी वो मुसीबत आ रही होगी, लेकिन ये सब इन लाइन विद कुरान है। यानी अगर वो लोग बामारिफत हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल वही है जो कुरान ने हमसे कहा है कि जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और जो मुशरिक हैं उनसे तुम कसरत से अजियत देखोगे इस जिंदगी में। तो यानी जो वही जो आगा खुमैनी हमेशा बात करके गए कि जिस दिन इन्होंने तुम्हें अपना दोस्त करार दे दिया, उस दिन होशियार रहना, वो खतरा है। तो ये सब होगा। तो यानी अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या जिस्म को हिजरत और जिहाद से हटा लें और रूह को तबाह कर दें, या जिस्म को हिजरत और जिहाद में मशगूल रखें और रूहानी तौर पर सुकून और इत्मीनान को हासिल करते चले जाएं। सही है, अब लाइफ की ये दो चॉइसेस हैं जो हम सबके सामने हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और हम इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम जिस्मानी आसाइश और आराम तलबी और इन सब चीज़ों को जमा करते हैं, हमारी रूहानियत उतनी डेड होती चली जाती है। और रूहानियत के डेड होने की मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि दो अलामतें बहुत वाज़ हैं, कुरान समझ में ना आना, नमाज में लज्जत का हासिल ना होना। ये दो चीज़ें नहीं हैं, समझ लें कि इधर अंदर से खाना खाली है। नफ्स का रूह से कनेक्शन नहीं डेवलप हुआ, वो जो रूहानी चैनल से इंसान की तरफ फ्यूज़ात इलाहिया खुदा की तरफ से नाजिल होते हैं इंसान की तरफ, वो नहीं, वो चैनल बंद है, ब्लॉक है। तो इन दो चीज़ों को इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक तरफ खुदा कहता है इत्मीनान है, सुकून है, हयात तय्यब है, पाक है, दूसरी तरफ खुदा मुसलसल हिजरत और जिहाद और कत्ल और कताल और अजियत की बात करता है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन कैसे होती हैं? कि नफ्स का जिस्मानी पहलू हिजरत और जिहाद है, नफ्स का रूहानी पहलू हारमोनी और पीस और सुकून है, जितना ज़्यादा हम उससे अलाइन होते चले जाएं हुक्म खुदा के मुताबिक। फिर देखें, ये सारी की सारी तसल्लियां हैं मोमिनीन के लिए क्योंकि आम मोमिन बल्कि अच्छे दर्जे का मोमिन भी इस हवाले से परेशान रहता है, ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद, ला यगुर्रन्नका, गर्रा गुरूर यानी धोखा, डिसीट, ला यगुर्रन्नका तुझको डिसेप्शन में ना डालने पाए। क्या चीज़ ना डालने पाए? तकल्लुबुल्लज़ीना उन लोगों का उलटना पलटना, आगे पीछे आना जाना, कफरू जो काफिर हैं, फिल बिलाद शहरों में, यानी शहरों में काफिरों की आमद और रफ्त तुझे धोखे में ना डाल दे। मताउन कलील, ये एक सरमाया है जो नेग्लिजिबल है। मावाहुम थुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उसके बाद उनका एंड जहन्नम है। व बेसल मसीर, और कितनी बुरी जगह है लौटने के लिए और पलटने के लिए। अब ये हमारी प्रॉब्लम है या नहीं कि हम कहते हैं इनके पास? और इसीलिए खुदावंद करीम ने, शायद मैंने एक बात ये महसूस होती है, सूरह वल फजर के, फजर की नमाज में जो पढ़ने की ताकीद की गई है ना, बहुत जबरदस्त और कलीदी बुनियादी मारिफ उसके अंदर है कि उसमें इब्तदाई कहाँ से होती है। वल फजर वल लयाल अशर, और उसके बाद के कसमुल्लज़ी हिजर, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआदिन, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे काम किया तेरे रब ने कौम आद के साथ। और ये कौम आद को पहचानवाया किस लफ्ज़ों में गया है? असल चीज़ ये, लम युखलक मिथलोहा फिल बिलाद, कि उसके जैसे शहरों में कोई शहर नहीं बना। यानी खुदावंद करीम ने पैगम्बर अकरम के ज़माने में जो वही थी उस वक्त उन लोगों से, अरबों से ये बात की कि अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, ये क्या अपने को समझते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनसे पहले जिन कौमों को हमने तबाह कर दिया ये उसके 1/10 भी नहीं है। यानी जो आद और समूद और फिरौन और ये सब, उनको जो शान और शौकत और जाहो हशम और दौलत और वसाइल उनके पास मौजूद थे, ये 1/10 भी नहीं, कुछ भी नहीं उसके आगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? तो लम युखलक मिथलोहा फिल बिलाद, उस जैसा शहरों में शहर नहीं बना बनाया गया। व समूद लजीना जाब फ़ख्र बिलवाद, और वो समूद के जो वादियों को तराश कर घर बनाते थे, पहाड़ों में घर नहीं बनाते थे, पहाड़ों को तराश के उसमें घर बनाते थे। जी, और सखर कहते हैं अरबी जबान में फाद खे रे मजबूत हार्ड रॉक को, ये मिट्टी वाले पहाड़ नहीं, रॉक। वजाब फखर बिलवादी, के जो पहाड़ों को तराश के उसमें घर बनाते थे, ये थी कौम आद व समूद। तो ये मेरिट है ही नहीं कि इतनी ऊंची बिल्डिंगें बना ली हैं और इतनी सड़कें बना ली हैं और इतना ये निज़ाम कायम कर लिया है, ये कोई मेरिट नहीं है।
ये को तबाह क्यों किया? रीज़न है इसके पीछे
नहीं, वो एक तो क्या? एक तो वो ऊँटनी नाकतुल्लाह फ़ाकरूहा, हाँ हाँ, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम, और मतलब जनरल बदकार लोग थे और ज़ालिम लोग थे। नहीं, उनमें उनमें समूद का है, समूद का ये है कि उनमें ये तबकाती निज़ाम और तबकाती जुल्म बहुत ज़्यादा था, तबकाती जुल्म बहुत ज़्यादा, यानी कि जो अमीर हैं वो नीचे वालों को बिल्कुल क्रश कर रहे हैं और इस टाइप की चीज़। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन वैसे है ये
उसमें।
जी, बेसिक रीज़न तो तबाह होने की वही है, नाकतुल्लाह के वो जो ऊँटनी आई थी। तो एक ये भी खुदा मोमिनीन को हकीकतन तसल्ली दे रहा है कि ये कुफार का शहरों में घूमना, आगे पीछे अलटना पलटना, ये तुम्हें धोखा ना दे, ला यगुर्रन ना का तुम्हें धोखे में उबतला ना करे। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल सूरह कसस के आखिर में खुदा ने खुद बयान की है कारून की, कि कारून के पास कितनी दौलत थी। ये भी कुरान की आयतें, देखिएगा सूरह कसस का एंड आखिरी 10-15 आयतें। इतनी दौलत थी कि उसकी कुंजियां उठाने के लिए एक फौज थी। इतने उसके पास दौलत थी कि वो दौलत, यानी हम कहें कि भाई इतनी दौलत है कि उसके रजिस्टर और उसके हिसाब किताब करने के लिए 500 आदमी हाईवे में, ये हाल था उसका। और लोग जब उसको देख रहे थे तो ख्वाहिश कर रहे थे कि काश हम उस जैसे हो जाएं। और जब उसे खुदा ने जमीन में धसा दिया तो कहने लगे शुक्र है कि हम उस जैसे नहीं थे। तो ये ऐसी अकल नहीं होनी चाहिए इंसान की, यानी कम से कम मोमिन की अकल का ये मेयार नहीं होना चाहिए। उसको मोमिन को शुरू से समझ में आना चाहिए कि मैंने आपके सामने जो इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की जो दुआ भी पढ़ी थी, दुआ 35, उसमें आपके क्या जुमले आप फरमाते हैं कि मुझे ऐसा बना दे कि बेजी अदमिन खसासत, इनके मैं उससे खसीस यानि पस्त ना समझूं जिसके पास कुछ भी ना हो। बेजी अदमिन कौन? साहेब अदम। अदम का मतलब होता है नथिंग, गरीब फकीर नहीं, नथिंग। कि मैं उसको भी पस्त ना समझूं कि जिसके पास एब्सोल्यूटली कुछ नहीं है, और जो साहेब सरवत है उसे साहेब फजल ना समझूं। क्यों? इसलिए कि इज्जत उसकी है कि जिसे तेरी इबादत इज्जत अता करे, शराफत उसकी है जिसे तेरी इताअत शरीफ बना दे। ये ईमान, ये आइमा अलैहिस्सलाम का कंसेप्ट। तो इस चीज से धोखे में नहीं रहना। मताउन कलील एक ऐसा सरमाया है कि जो नेग्लिजिबल है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर उसके बाद जहन्नम है। लाकिन लजीन तकौ रब्बहुम, लेकिन अगर उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अपने रब का तकवा इख्तियार करते हैं, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो खुदा को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए जन्नतें भी हैं, बाकी सब कुछ भी है। और फिर ये आयत 199 इस बात को क्लेरिफाई करती है कि शुरू में ये सारा बयान शुरू वहाँ से हुआ था कि अहले किताब तुम्हारे लिए बायस अज़ियत हैं जो तुमसे पहले गुजर गए। यहाँ पर खुदा अहले किताब में से एक ग्रोह को अलग कर रहा है, लेकिन किस बुनियाद पर अलग कर रहा है वो देख लें। ताकि हम बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे मकामात पर, यानी कि हम भी जब बात करें तो हम कहते हैं वो बहुत अच्छे अखलाक के हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिसेंसी से पेश आ रहे हैं या ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं कि इसलिए वो अच्छे हैं। लेकिन इस बुनियाद को समझ लें कि खुदा अहले किताब में से जिन ग्रोह को अलग कर रहा है उस बुनियादी ख़राबी से, वो कौन है? व इन न मिन अहल किताब लमन युमन बिल्लाही वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम, और बेशक अहले किताब में से कुछ वो हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ उस पर, जो उनकी तरफ नाजिल हुआ उस पर, खाशईन लिल्लाही अल्लाह के लिए खशियत खुशू रखते हैं, ला यश्तरून, शायद ये सबसे अहम बात, ला यश्तरून बिआयातिल्लाह समनन कलीला, और खुदा की आयतों को कम कीमत के बदले बेचते नहीं हैं। जितने भी अहले किताब हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनके पेशवाओं का ये बहुत बड़ा पेशारा है, खुदा की आयतों को। अच्छा, समनन कलीला से मुराद क्या है आप बताएं? इन्हें क्या लो प्राइस, ये लो प्राइस क्या है? लो प्राइस का मतलब है कि अगर $50 मिले तो नहीं बेचो, 5,000 मिल जाए तो नहीं। समानम कलीला कि ये प्राइस की बात जो हो रही है, तो थोड़ी प्राइस के क्या मतलब है? मुकम्मल दुनियावी फायदा, चाहे सारी दुनिया दे दी जाए वो भी समान कलील है। صحیح ہے, یہ مطلب ہے اس کا. سامان قلیل کا مطلب یہ نہیں تھوڑی رقم, یہ دو پلاٹ مل رہے ہیں تو رک جا اور سامانن قلیلا, یعنی ہر وہ چیز جو فانی ہے. اگر تمام کی تمام فانی دولت لا کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے وہ بھی سامان قلیل ہے, کیونکہ فانی ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے بنیادی کرائٹیریا کیا دیا ہے چیزوں کی قیمت کا, جو فنا ہو جائے وہ جتنا بکثرہ تو کم ہے, اور جو باقی رہنے والا ہو وہ جتنا تھوڑا ہے زیادہ ہے. یہ مین کرائٹیریا ہے زیادہ اور کم کا, یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا اور یہ زیادہ. صحیح. تو اس کے کہنے سامان قلیل کا مطلب ہے کہ دنیا کے مال کے بدلے, دنیا کی شہرت کے بدلے, دنیا کی عزت کے بدلے آیات الہیہ کو بیچ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے جتنے بھی دین چاہے وہ شروع سے آپ لے لیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک, جو دین کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں اور جو دین کو مطلب, حالانکہ اصولی طور سے کوئی دین کا رکھوالا ہوتا نہیں ہے, مطلب غلط بات ہے, یہ ہماری بیسک غلطی ہے, اور اس غلطی کی بہت بڑی وجہ ہم جیسوں کی نالائقی ہے کہ ہم نے دین پر محنت نہیں کی, ہم نے دین کو اپنی زندگی سے الگ ہٹا دیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا, اس کے ٹھیکے دار بن گئے. تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے صرف اپنی زندگی میں اس بات کو اہمیت دی کہ ہم اپنی دنیا بنائیں گے, اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز سے زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال, تو جو ایسے نہیں ہیں وہ اہل کتاب خدا کی نظر میں باعزت ہیں, ان کے لیے کیا ہے, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے پاس, ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب. اور پھر آخری آیت سورہ آل عمران کی سمجھ لیں, یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے مومنین کی اجتماعی ولایت کا, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہاں سے سورہ مائدہ کی آیتوں سے کنیکٹ ہوں گے کہ جس میں ولایت اجتماعی کا پورا کنسیپٹ دیا گیا ہے. یہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے سب سے پہلے خود صبر کرنا سیکھو, خود صبر کرو. اچھا, صبر کی تعریف میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ اگر ہم دہرا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
جی 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 جانا اوپر ہے لیکن جو بیچ کی تکالیف ہے اس کو برداشت کرنا صبر.
جی,
کچھ نہ ہونا وہ صبر نہیں ہے.
یعنی اس کو اگر ہم اور زیادہ تھوڑا سا پن پوائنٹ کریں تو صبر کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ عالی ہدف ہے. یعنی جو انسان اعلی ہدف نہیں رکھتا وہ صابر نہیں ہو سکتا. اعلی ہدف ہو, یعنی جو وہ مثال بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی, پہاڑ کی چوٹی ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, ہدف عالی ہو اس کی طرف حرکت کرے, حرکت میں جو پرابلمز درپیش ہوں ان پر استقامت اختیار کرے, اس کوالٹی کا نام صبر ہے. تو پہلی چیز مومنین کو کیا کرنا ہے, اس بیرو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, اسے خود ایسے ہونا ہے کہ زندگی میں ہدف اعلیٰ رکھتے ہوں اور اس کی طرف حرکت کریں, اور اس کے لیے یعنی اس راہ میں استقامت برداشت کریں. پھر کیا کریں, صابرو, دوسروں کو صبر دلاؤ. یعنی یہ نہیں کہ خود, تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, کہ خود صابر ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, بلکہ اسی صبر کی تلقین اور تشویق دوسرے مسلمانوں اور دوسرے مومنین کے لیے. یعنی کس طریقے سے کہ ان کو بھی وہ ہدف عالی دکھاؤ اور ان کو بھی ترغیب دو, ان کو بھی تیار کرو کہ وہ بھی اس رستے پر جائیں اور استقامت اختیار کریں. تو یہ ولایت اجتماعی ہے, اس طریقے سے ولایت اجتماعی قائم ہوتی ہے. اور تیسرا, رابطو, آپس میں کنیکٹڈ رہو, مربوط رہو. کہ وہ معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ یعنی کہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک دوسرے کی پرابلمز ان کی نظر میں نہیں ہیں, کسی کے پاس کوئی قوت ہے, کسی کے پاس کوئی وسیلہ ہے, وہ سالو نہیں کرتا, پرواہ نہیں کرتا. یعنی ہم سب کو مل کر خود بھی صابر ہونا ہے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا ہے, اور باہمی طور سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو بھی پکڑے رکھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ان تمام معاملات میں تقوی الہی کو پیش نظر رکھو کہ امید ہے کہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ ولایت کا فارمولا ہے. کہ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اور اسپیسیفک ہو جائیں گے. سورہ مائدہ کی آیتیں تقریباً 53-59 ہیں کہ جس میں ولایت اجتماعی کا ذکر ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کو باہم کیسے رہنا ہے, حجت خدا کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے کہ جو آپ کے دائرے سے باہر ہیں, اس نیٹ ورک آف لائف کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خود ہمیں کیسا بننا ہے انٹرنلی, چاہے ایز اے فرد ہو چاہے ایک اجتماع ہو, تو اس کے لیے یہ بہترین فارمولا ہے جو سورہ آل عمران کی آخری 20 آیتوں میں بیان کیا گیا. اور یہ شاید میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو شروع کی تفصیلی صورتیں سورہ یونس تک, اس میں باتوں کو بہت کھول کے بیان کیا گیا ہے, اور آخر کی صورتوں میں اس کو بہت کنسائز اور کمپیکٹ وے میں بیان کیا گیا ہے. تو اگر آپ کافی زیادہ تفصیل سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شروع کی صورتیں توجہ سے پڑھیں, یعنی سورہ بقرہ سے لے کے سورہ یونس تک. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو بسم اللہ.
جی
نہیں نہیں, فلاح کا مطلب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کافر اور فلاح یہ دونوں کسان اور کاشتکار کو کہا جاتا ہے. کسان کافر اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, اور کسان فلاح اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی لہلہاتی فصل کو کاٹ کر خوشی خوشی گھر جا رہا ہوتا ہے. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہاری کوششیں برابر ثابت ہوں اور تم اپنے سرمایے کو اچھے طریقے سے خوشحالی کے ساتھ سمیٹو اور اپنے گھر جاؤ. لیکن اب بظاہر تو بہت مشکل نسخہ ہے, مطلب فری تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے. جی اچھا اچھا وہ والی صحیح ہے. جی تسبیح کا مطلب اگر آپ بالکل بیسکس میں جا کے لیں تو تسبیح سبوح سے یا سبحانہ سے مربوط ہے, یعنی کنیکٹڈ ہے. کہ ہم جو ذکر خدا کرتے ہیں اس کے بنیادی طور سے چار پہلو ہیں, چار پلرز کہہ لیجیے, اور ان چار پلرز کو جمع کر دیا گیا ہے تسبیحات اربعہ میں, اسی لیے اس کی بے انتہا فضیلت ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ذکر خدا کے چار پلرز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تسبیح جو ہے وہ سبحانہ سے مربوط ہے. سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا سے ہر شرک کی نفی کرنا. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی پستی نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے, کوئی آلودگی نہیں ہے. جب آپ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو بنیادی طور سے جو چیز آپ پر سب سے زیادہ حاوی ہوتی ہے وہ دشمن کا روب ہے. جی تو یعنی کہ خدا کا روب اور دشمن کا روب مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے دل میں جب ہم مقابلے میں جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو تاکہ فقط اور فقط خشیت الہی باقی رہے, دوسری چیزیں ہٹ جائیں. نہیں لیکن میں ایک چیز تھوڑا سا, کیونکہ اس حوالے سے کافی میں کوشش کرتا ہوں غور کرنے کی, آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی بات صحیح ہے. جس چیز پر میرا نظریہ قائم ہے وہ یہ کہ جب انسان خدائی ہوتا ہے تو جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں ان کے حاصل کرنے کی توفیق انسان کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے, اور یہ مجھے ذاتی طور سے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, یعنی کہ جس دن فار ایگزامپل میں کوشش کرتا ہوں کہ دن ویسا گزارنے کی کوشش کروں جو شرائط خدا نے بیان کی ہیں, اس دن مجھے وسائل پر محنت نہیں کرنا پڑتی, وسائل خود بخود میرے لیے ہموار ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس دن میں خراب کرتا ہوں, اسپیشلی اپنی صبح خدا نخواستہ خراب کرتا ہوں, اس دن ہر چیز میرے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو وسیلے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو صرف اور صرف خدا سے تعلق اور ولایت پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, باقی وہ ساری توفیقات آپ کو خود بخود مل جائیں گی. بھائی جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایون ہم اس کی ایک جو مثال لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو بالکل ہی ڈاؤن ٹروڈن نیشن تھی نا, اس حوالے سے وسائل کے اعتبار سے, کہ صدیوں کی غلامی اور بدترین ہے جو فرعون نے ان کو جس چیز کا وہ بنایا تھا ان کے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا نا کہ وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے خدا نے کام کیا, اور بلکہ سورہ اعراف کی آیتیں کہ یہ فرعون وغیرہ نے جتنے اپنے محلات اور مال اور جائیداد بنائے تھے ان سب کا وارث ہم نے اس قوم کو بنا دیا جس کو مستضعف کر دیا گیا تھا. مستضعف یعنی ضعیف کر دیا گیا تھا, کمزور کر دیا گیا تھا. تو یہ چیز نہیں لگتی ہے ایسی. اب مسلمانوں کو دیکھیں کہ ابتداء اسلام میں جو چیز ہے کچھ بھی وسائل نہیں تھے, سب کچھ آ گیا, اتنی بڑی مطلب دنیا, آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت قائم ہو گئی. تو یہ پرابلم نہیں ہے, وسائل پرابلم نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے اپنی کوشش کریں, آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ لیں آگے چلیں, لیکن اصل اس پہ محنت کرنا ہے. اور پھر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, توفیق ملتی ہے آپ کو, ایسا لگے گا کہ آپ کو رستہ ملتا چلا جا رہا ہے کہ اب میں یہ کروں, اب میں یہ کروں, اب میں یہ کروں. یعنی وہی قوم تھی جس کو کسی چیز کی توفیق نہیں تھی, اب وہی قوم ہے ماشاءاللہ راکٹ بھی بنا رہی ہے اور یہ بھی بنا رہی ہے وہ بھی بنا رہی ہے. یہ ساری کی ساری توفیقات ملی اس دین کی وجہ سے. یعنی پہلے جب خالی دنیا کے پیچھے تھے تو کشکول گدائی تھا کہ جو امریکہ جھولی میں ڈال دے, اب جب ماشاءاللہ دین آ گیا تو اب یہ توفیقات نصیب ہو گئی. تو وسائل پرابلم نہیں لگتے ہیں بالکل بھی, چاہے وہ ہمیں ہمارے ذریعے سے پیدا ہونے ہوں ہمیں توفیق مل جائے گی, کسی اور ذریعے سے آنے ہوں وہ ذریعہ آسان ہو جائے گا, لیکن بنیادی جو محنت کرنی ہے نا وہ یہ محنت کرنی ہے, خدا کو راضی رکھنے والی اور خدا سے رشتہ ولایت قائم کرنے کی محنت کرنا ہے. وہ خدا کے ہاتھ میں, وہ سوائے خدا کے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے.
وہاں بھی معاہدہ کیا گیا, وہاں بھی ایگریمنٹ ہوا.
کون سا ایگریمنٹ؟
مطلب انہوں نے ایگریمنٹ ہوا نا پھر کفار کے ساتھ کہ نہیں ہوا, وہ کیسے بائیک آؤٹ ختم ہوا پھر, ایگریمنٹ کے تحت ہی ختم ہوا نا. کسی آج کے دور میں بھی ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو مثلاً اس کو کس نظر سے دیکھیں گے پھر آپ؟ اگر
دیکھیں اس میں دو, میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں, ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں بہت زبردست, یہ کنسیپٹ